पृष्ठ संख्या 244, अध्याय 25। उस्ताद अमीर हुसैन खां। उस्ताद अमीर हुसैन खां फरुखाबाद घराने के उस्ताद मुनीर खां के भांजे और शिष्य थे। 24 गुरुओं से विद्या ग्रहण किए हुए खलीफा उस्ताद मुनीर खां के उस्ताद अमीर हुसैन खां लाडले थे और उनके भांजे होने के कारण घराने का खलीफा पद भी उस्ताद अमीर हुसैन खां को प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह पद यद्यपि रिश्ते के जरिए पाया हो तो भी उन्होंने टिकाए रखा स्वकर्तित्व के बल पर ही। गुरु के ज्ञान भंडार और उदार स्वभाव पर शिष्य की ज्ञान प्राप्ति निर्भर होती है। उस्ताद अमीर हुसैन खां के गुरु उस्ताद मुनीर खां एक गुलदस्ता कलाकार थे और विद्यादान में भी मशहूर थे। इस वजह से सब घरानों के विविध वादन प्रकारों का बड़ा भंडार उन्हें अपने गुरु से प्राप्त हुआ। पृष्ठ संख्या 245। कठोर रियाज, चिंतन और मनन के जरिए उस्ताद अमीर हुसैन खां ने उस तबले को न केवल सीखा, लिखा और कंठस्थ किया बल्कि उसको सिद्ध हस्त भी किया। हैदराबाद के वास्तव्य में उस्ताद अमीर हुसैन खां प्रमुखतः पूरब शैली से तबला वादन किया करते थे। पहलवानी ताबिलियत के खां साहब ने लखनऊ फरुखाबाद शैली का खुला बाज प्रचंड रियाज के जरिए आत्मसात किया था और एक प्रभावी तबला वादक के रूप में वे ख्यातनाम भी हो चुके थे। किंतु उस्ताद मुनीर खां के अलावा उनको प्रभावित करने वाला एक और व्यक्ति उनके जीवन में आया और वह थे दिल्ली घराने के प्रतिभावान तबला वादक उस्ताद नथु खां। उस्ताद अमीर हुसैन खां उस्ताद नथु खां के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक कहा करते थे कि उनकी दिल्ली शैली के प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने दो उंगलियों के तिट, तिरकिट और धीर-धीर शब्दों पर इतना रियाज किया कि ये तीनों शब्द उनके वादन में महत्वपूर्ण शब्दों के रूप में आया करने लगे और इन कारणों से उस्ताद अमीर हुसैन अपने लखनऊ फरुखाबाद घराने के तबले के साथ ही साथ दिल्ली घराने का तबला भी अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं परिणाम कारकता के साथ प्रस्तुत किया करते थे। बाएं हाथ से तबला बजाने वाले उस्ताद अमीर हुसैन खां पर उनके प्रचंड रियाज के फलस्वरूप संभवतः साक्षात देवी उन पर प्रसन्न हुई हो और उनसे खां साहब को यह वर प्रदान किया हो कि तबले का कोई भी अक्षर उनके हाथों अत्यंत तैयारी से अस्पष्ट रूप में एवं परिणाम कारकता के साथ अनायास बज जाए। शरीर से सशक्त उस्ताद अमीर हुसैन खां घंटों सोलो वादन करते रहने पर भी लोगों को कभी थके हुए नजर नहीं आए। उस्ताद अमीर हुसैन खां को सैकड़ों कायदे और रेले अवगत थे और उनका प्रस्तुतिकरण भी वे प्रचंड तैयारी से समर्थता के साथ किया करते थे। किंतु उनके तबले की असली ताकत और सच्चा सौंदर्य उनके बजाए हुए गत टुकड़ों में से प्रतीत होता था। तभी सभी पुराने विद्वान एवं अलग अलग घरानों के उस्तादों की बंधी हुई रचनाओं का प्रस्तुतिकरण वे संबंधित उस्ताद का नाम लेकर किया करते थे। गतों के अनेक प्रकार उन्हें अवगत थे। केवल गत टुकड़ों को वे निरंतर दो दो घंटे सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। केवल मुनीर खां साहब से प्राप्त तबला बजाना अगर उन्होंने तय किया होता तो भी उनके वादन में कोई कमी न आती। किंतु उस्ताद अमीर हुसैन खां केवल एक वादक नहीं बल्कि एक प्रतिभावान कलाकार थे और उन्होंने अनेक कायदे और असंख्य गत टुकड़े रचे हैं। उनकी रची हुई बंदिशें पुराने उस्तादों की बनाई हुई बंदिशों जितनी ही सुंदर हैं। शायद रेडियो स्टेशन पर बजाने के उद्देश्य से हो अमीर हुसैन खां साहब ने अन्य तालों में जो तबला प्रस्तुत किया वह बहुतांश में उन्हीं का रचा हुआ था। पृष्ठ संख्या 246। उस्ताद अमीर हुसैन खां वादक एवं रचनाकार के रूप में जितने श्रेष्ठ थे गुरु की हैसियत से भी वे उतने ही श्रेष्ठ थे। आज मुंबई एवं महाराष्ट्र के अन्योन्य क्षेत्रों में जो तबला लोकप्रिय हुआ है उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब ने गुरु की हैसियत से असंख्य विद्यार्थियों को तबला सिखाया है। आज महाराष्ट्र भर में कम से कम 500 विद्यार्थी उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब का तबला जिम्मेदारी के साथ बजा रहे हैं और शिष्यों को सिखा रहे हैं। तबला वादन के सभी प्रकार अमीर हुसैन खां साहब प्रस्तुत किया करते थे, किंतु उनका झुकाव गतिमान तबला बजाने की ओर ही अधिक था। इसलिए अपनी सभी रचनाएं द्रुत लय में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद आता था। उस्ताद अमीर हुसैन खां को संभवतः धीमी लय में प्रस्तुत किए जाने वाले पेशकार में विशेष रस प्राप्त न होता हो, इसलिए उनके वादन में धीमी लय का पेशकार कंचित ही सुनने को मिलता था। उनका तबला सुनते समय एक बात प्रमुखतया यह महसूस होती थी कि वे अपने तबले में विपुल एवं समृद्ध भाषा का उपयोग अत्यंत प्रभावात्मकता के साथ किया करते थे। अमीर हुसैन खां साहब के असंख्य शिष्यों में तबले का परिणाम कारक प्रसार करने वाले पंडित अरविंद मुलगांवकर उनके अग्रणी शिष्य के रूप में उल्लेखनीय हैं। तबले का प्रसार करने वाले उनके अन्य शिष्यों में पंडित पंढरीनाथ नागेशकर, पंडित यशवंत केरकर, उस्ताद बाबा साहब मिरजकर, डॉक्टर आबान मिस्त्री, पंडित निखिल घोष, पंडित पांडुरंग शालुंके, पंडित सुधीर संसारे आदि के नाम उल्लेख योग्य है। उस्ताद हबीबुद्दीन खां। अजराणा घराने के खलीफा उस्ताद शम्मू खां के सुपुत्र एवं शिष्य उस्ताद हबीबुद्दीन खां ने अपने घराने की शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक प्रभावी वादक के रूप में ख्यातनाम होने पर भी दिल्ली घराने के प्रतिभावान तबला नवाज उस्ताद नथु खां का गंडा बांधकर उनके पास तबले की शिक्षा ग्रहण की। नथु खां साहब के संस्कार से उनका स्वयं का बाज अधिक सुंदर एवं प्रभावी बन गया। उस्ताद हबीबुद्दीन खां के वादन में गतिमानता का सौंदर्य साकार हुआ करता था। बाएं पर उनकी हुकूमत थी और घेतक घेतक दिंग दिनागिन जैसे शब्द प्रयोग वे प्रचंड तैयारी में और कर्ण मधुर नादों के जरिए प्रस्तुत किया करते थे। अपने प्रस्तुतिकरण में वे प्रथमतः दिल्ली घराने के कायदे दिल्ली शैली में बजाया करते थे। अजराणा के कायदे सर्वसाधारणतः तिस्र जाति में बांधे गए हैं। उनके प्रस्तुतिकरण में अजराणा के चतरस्र जाति के कायदों का भी प्रभावी प्रयोग सुनने को मिलता था। पृष्ठ संख्या 247। अपने कायदों की रचनाओं का रूपांतर वे सोच समझकर 3-2-3 मात्रा खंडों में किया करते थे, किंतु उनकी और एक खासियत यह थी कि कायदे की रचना का अंत्य पद वे इस ढंग से विभाजित करते थे कि जिससे उक्त रचना का आकार 3:1/2 और 4:1/2 मात्राओं के खंडों में हुआ करता था। हाथ की प्रचंड तैयारी होने से कुछ कायदों को एक गुना में प्रस्तुत करते समय उसे वे सहेतुक डगमगाती लय में प्रस्तुत किया करते थे और ऐसी लय के द्वारा एक निराली ही आकर्षण चमत्कृति से श्रोताओं को खुश किया करते थे। मात्र एक चमत्कृति के रूप में ही अत्यंत तैयारी में वे मुट्ठी के धीर-धीर का इस्तेमाल किया करते थे, जिन उंगलियों एवं निकासों से रचना के मूल अक्षर एक गुना में प्रस्तुत होते हैं, उसी निकास में उन्हें चौगुन में प्रस्तुत करना असंभव होता है, किंतु उस रचना को चौगुन में ही प्रस्तुत करने की जिद में उन्होंने निकासों के मार्गों को कलात्मकता के साथ बदल दिया, जिससे उस रचना को चौगुन में सुनते समय ऐसा आभास होता था कि मानो वह रचना अत्यंत शुद्धता के साथ बज रही हो। यह कौशल ही अजराड़ा घराने की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। उनके वादन का अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह भी था कि वे रव को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया करते थे। वाद्य संगीत की सात संगत में भी उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया था, फलतः वे बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हुए थे। उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद कादर बख्श के शिष्य थे और उन्हें पंजाब घराने के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ अधिकारी माना जाता था। 1945 के आसपास उस्ताद अल्लाह रखा मुंबई नभुवाणी केंद्र पर तबला वादक के हैसियत से नौकरी कर रखे थे। इस काल में नभुवाणी पर गायन वादन क्षेत्र के अनेक ज्येष्ठ कलाकारों की उन्होंने तबले पर साथ संगत की है। 1945 के बाद के काल में समर्थ रचनाकार के रूप में दो कलाकारों के नाम उल्लेखनीय हैं, उस्ताद अमीर हुसैन खां और उस्ताद अल्लाह रखा। किंतु इन दोनों महान वादकों के रचना प्रकारों में पर्याप्त फर्क था। उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब के द्वारा निर्मित रचनाएं समृद्ध भाषा से सजी धजी होती थी, तो उस्ताद अल्लाह रखा की रचनाएं प्रगत कलात्मक गणित के विविध रूपों से अलंकृत रहती थी। पृष्ठ संख्या 248। उस्ताद अल्लाह रखा ने अपनी निज की पेशकार की रचना की, कायदे बनाए, टुकड़े रचे, गतें बांधी और त्रिपल्ली तिहाई जैसी अलग संकल्पनाओं की रचनाएं भी बांधी। उस्ताद अल्लाह रखा के द्वारा बजाया गया उनका खुद का तीसर जाति का पेशकार इस प्रकार था। धाक धा अधा आति धा अधा आधिन ना धा अधा धी ना आ। उसी प्रकार उस्ताद अल्लाह रखा का रचा हुआ एक कायदा अत्यंत तैयारी में बजाने के लिए सुगम कायदा है। हिंदुस्तान में तबले के विद्यार्थियों में यह कायदा अत्यंत प्रसिद्ध है और वे अपने वादन में इसका इस्तेमाल करते हुए दिख पड़ते हैं। धा तिरिकिट तक तिरिकिट धा तिरिकिट तक तिरिकिट धाती धागे धीना गीना धाती धागे तीना कीना और काल। इस कायदे का ढांचा 3-3-2 खंडों का है और शब्द रचना ऐसी है कि यह कायदा रूपक एवं झप ताल में अत्यंत सुविधाजनक रूप में बदला बजाया जा सकता है। उस्ताद अल्लाह रखा ने अलग अलग गढ़नों की लयों की विरामों की तिहाई त्रिपल्ली गतें चक्रधार परन टुकड़े कायदे और चलन जैसी सर्वांग सुंदर रचनाएं तैयार की और उनकी यह निर्मिति प्रक्रिया उनके मृत्यु काल तक उतने ही उत्साह के साथ अविरत रूप में चालू थी। साथ संगत के तबले में अत्यंत उत्स्फूर्त एवं हाजिर जवाबी वादन करने वाले प्रयोगशील कलाकार समूचे हिंदुस्तान में इने गिने ही हैं। उनमें उस्ताद अल्लाह रखा अग्रणी थे। उस्ताद अल्लाह रखा को पंडित रविशंकर जी का दीर्घ सानिध्य प्राप्त हुआ था। स्वयं रविशंकर जी असामान्य प्रतिभा के चिंतनशील एवं प्रयोगशील कलाकार हैं। उनके सितार के साथ तबला वादन को मुक्त रूप में बजाने का अवसर मिलता था, क्योंकि वे स्वयं ताल में अत्यंत पक्के थे और तबला वादन के कौशलपूर्ण प्रस्तुतिकरण में हमेशा रस लिया करते थे। किंतु पंडित जी की अपेक्षा थी कि संगतकार को बजने वाली रचना कल्पना के अनुरूप ही संगत करनी चाहिए। उनकी इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए उस्ताद अल्लाह रखा ने विशेष रस लिया और परिश्रम उठाया और परिणामतः उस्ताद अल्लाह रखा का साथ संगत का अपना एक नया तंत्र ही निर्माण हुआ। इस तंत्र को उन्होंने निर्मित किया, उसे विकसित करके समृद्ध किया और लोकप्रिय बनाया। इस वादन शैली में उस्ताद जाकिर हुसैन कदाचित अपने पिता के आगे भी बढ़ गए होंगे, किंतु उनकी प्रगति का मार्ग उस्ताद अल्लाह रखा के द्वारा निर्मित मार्ग से होकर ही गुजरते हुए आगे बढ़ गया है। उस्ताद अल्लाह रखा का निर्माण किया गया यह सात संगत का तंत्र तबला जगत को एक योगदान के रूप में प्राप्त हुआ है। पृष्ठ संख्या 249। पंजाब घराने का तबला अवगत होने से युवावस्था से ही अल्लाह रखा त्रिताल के अतिरिक्त अन्य तालों में भी प्रभावपूर्ण सोलो वादन करते थे। रूपक, झपताल, पंचम सवारी का उनका सोलो वादन अत्यंत प्रभावपूर्ण हुआ करता था। गत अनेक वर्षों से उस्ताद अल्लाह रखा तबले के विद्यादान में रत थे और अनेक युवक उनके पास तबले की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस्ताद अल्लाह रखा को संगीत का अच्छा ज्ञान था तथा कुछ चित्रपटों के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन भी किया है। एक स्वतंत्र तबला वादक, महान साथ संगतकार, प्रतिभावान निर्मितिकार एवं समर्थ गुरु, इन चारों भूमिकाओं को गत 50 वर्ष उस्ताद अल्लाह रखा जबरदस्त ताकत के साथ अदा की है। इन चारों क्षेत्रों में वे लोकप्रिय थे, किंतु उनमें उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनकी विकसित की गई सात संगत की स्वतंत्र शैली। उस्ताद अल्लाह रखा के शिष्यों में मुंबई के पंडित योगेश शमसी एक अग्रण्य कलाकार हैं। उस्ताद इनाम अली खां। उस्ताद इनाम अली खां दिल्ली घराने के विद्वान एवं ज्येष्ठ तबला वादक उस्ताद गामे खां के सुपुत्र थे। गामे खां के हाथ को चोट पहुंचने के कारण कई वर्षों से वे तबला वादन नहीं करते थे, परंतु वे अत्यंत प्रतिभावान रचनाकार थे। दिल्ली घराने की संपूर्ण तालीम उस्ताद इनाम अली खां को उनके पिता से प्राप्त हुई थी। उस्ताद इनाम अली भी एक प्रतिभावान कलाकार होने से उनका तबला वादन घराने के अनुशासन रहित नवनिर्मित साहित्य से युक्त रहता था। दिल्ली घराने के 20वीं शती के एक श्रेष्ठ तबला वादक उस्ताद नथु खां इनाम अली के मामा थे और नथु खां साहब के तबले की विशेषतः उनकी खास निकास शैली की छाप भी उनके तबले पर अंकित हुई प्रतीत होती थी। उस्ताद इनाम अली अपने वादन में कभी कभी पूरब अंग की कुछ गतें भी बजाया करते थे। उन गतों को अत्यंत फुर्ती से प्रस्तुत करते थे। ऐसी गतें प्रस्तुत करने का उनका उद्देश्य यही दिखाना था कि पूरब शैली का तबला भी वे उत्कृष्ट रूप में बजा सकते हैं। किंतु उनका मन पूर्णतः रत था दिल्ली के पेशकार एवं कायदे की रचनाओं एवं उनके विविधांगी विस्तार क्रिया में। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि वे गत टुकड़ों का तबला वादन एवं अन्य तालों में सोलो वादन क्यों नहीं करते। इस पर उनका दिया हुआ उत्तर इस प्रकार था। पृष्ठ संख्या 250। त्रिताल के पेशकार एवं कायदे के विशाल सौंदर्यमय फूलों फलों के बगीचे में मेरा मन इतना रम गया है कि उसमें से बाहर निकलने के लिए मेरे पास समय नहीं है और उसमें मुझे विशेष आनंद भी नहीं मिलता। दूसरा, त्रिताल पूर्णतः संबद्ध आकार का है, चतरस्र जाति का है तथा वह तालों का बादशाह है। त्रिताल में जैसी सर्वाम सुंदर एवं सर्वांग परिपूर्ण रचनाएं की गई हैं और नवीन रचनाएं भी बांधी जा सकती हैं, वैसी अन्य तालों में नहीं। मात्राओं के सूक्ष्म विभाजन की अन्य विविध ताल बजाने के लिए जो खास खंडबद्ध वाक्य प्रयोगों वाक्यांशों या संयुक्त शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है वे सब उनके त्रिताल में प्रयुक्त दिखाई देते थे। फलतः अन्य तालों में अगर सोलो बजाना ही हो तो उस्ताद इनाम अली के लिए सहज संभव था। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए रूपक झपताल आदि तालों में सोलो वादन के लिए अनेक असली रचनाओं एवं विस्तार के पलटे सिखाकर उन्हें तालीम दी है। उस्ताद इनाम अली जब अपनी कला प्रस्तुत किया करते थे तब उनकी कलाकृति पर उनके गुरु की और घराने की छाप स्पष्टतया दिख पड़ती थी। यह स्वाभाविक भी था और अनिवार्य भी, किंतु साथ ही इनाम अली के अपने निज के कला व्यक्तित्व की भी छाप उनके सोलो वादन पर अंकित दिखाई देती थी। उनके पेशकार एवं कायदा वादन में उनकी सौंदर्य दृष्टि और विलक्षण प्रतिभा की अनुभूति श्रोताओं को प्राप्त होती थी। उनके वादन के वैशिष्ट्य थे उनका तबले पर का शास्त्र शुद्ध हाथ, दिल्ली घराने के वैशिष्ट्यों को परिणाम कारकता के साथ प्रस्तुत करने वाला उनका निकास और रचना की कलात्मक अद्वितीय विस्तार प्रक्रिया। उनकी कायदे की रचनाएं आकार में छोटी होती थीं, किंतु एकाध कली लिखकर जिस प्रकार सुंदर फूल में रूपांतरित हो जाती है उसी प्रकार अपनी उक्त रचनाओं का विस्तार वे इस प्रकार किया करते थे कि मानो उस कली की एक एक पंखुड़ी नाजुक रूप में और लीलया सुलझती जा रही हो और धीरे धीरे उस कली का सुंदर खिले हुए फूल में रूपांतर हुआ हो। त्रिताल के एक ही कायदे से उनके द्वारा रचित झपताल एवं रूपक के कायदे के रूप हम देखें। त्रिताल का कायदा, धागे तीट कत्ता धागे तिरकिट तिंग तीना कीना। झपताल का कायदा, धागे तीट कत्ता धागे तीट धागे तिरकिट तिंग तीना कीना। रूपक ताल का कायदा, धागे तीट धागे तिरकिट धीन धीना गीना तीट कत्ता धागे तिरकिट तिंग तीना कीना। पृष्ठ संख्या 251। उस्ताद इनाम अली अपनी वादन शैलियों की गतें दो उंगलियों की सहायता से बजाई गई चाट प्रधान रचना अत्यंत नजाकत एवं सशक्तता के साथ प्रस्तुत किया करते थे। पखावज की भाषा का ऐसी रचनाओं पर जरा भी प्रभाव नहीं है, और वे बलपूर्वक कहते थे। ऐसी ही एक गत निम्नानुसार है। धागे तीट कत्ता धागे तीट कत्ता धागे तिरिकट धीना गीना धा धागे तिरिकट धीना गीना धा धागे तिरिकट धीना गीना धागी तीट धागे तिरिकट तीना कीना। सर्वसाधारणतः जल्द लय में तिरिकट शब्द आए तो उस शब्द के बदले त्रक शब्द का प्रयोग करने का रिवाज है, क्योंकि त्रक को तिरिकट का लघु रूप माना जाता है। द्रुत लय में तिरिकट शब्द के बाद धीना गीना शब्द का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए एक अलग ही रियाज की जरूरत होती है, और सौंदर्य के दृष्टिकोण से देखने पर कायदे की रचना में जल्द तिरिकट के बदले त्रक शब्द अधिक अच्छा नाद माधुर्य निर्माण करता है। किंतु यह सब जानते हुए भी घराने की शुद्ध परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उस्ताद इनाम अली तिरिकट शब्द का प्रयोग करना पसंद करते थे, अर्थात यह प्रयोग वे अत्यंत सफाई एवं तैयारी से करते थे। फलतः उनके हाथों उपर्युक्त गत परिणाम कारकता के साथ बजाई जाती थी। उस्ताद इनाम अली साथ संगत नहीं करते थे, किंतु कंचित प्रसंग में उन्होंने गायन और वादन की साथ संगत भी की है। तबले के गणित की और उपज अंग से निकास करने की उनकी क्षमता के कारण सितार की साथ संगत कैसे की जाए, इस संबंध में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सोच विचार किया था। छोटे छोटे चलन और लगियां भी वे अत्यंत परिणाम कारकता के साथ बजाया करते थे। उस्ताद इनाम अली खां की वाणी शुद्ध थी, और उनके धा धिन घे के बोल के उच्चारण में बाएं के घुमारे की गहरा ध्वनि रचना को सजीव बनाता था। फलतः उनकी पढ़ंत भी रसिक श्रोताओं को उच्च स्तर का अनोखा आनंद दिया करती थी। पृष्ठ संख्या 252। उस्ताद शेख दाऊद। भारत के स्वतंत्र तबला वादन के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तबला वादक उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कलकत्ता और बंबई में ही रहते थे। आज भी रह रहे हैं। शायद स्वतंत्र तबला वादन का माहौल जिस प्रदेश में होता है वहाँ नए कलाकारों का निर्माण होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यंत उच्च स्तर का तबले का ज्ञान और कौशल प्राप्त करके भारत के दक्षिण प्रदेश में अपना नाम और प्रतिभा को उज्ज्वल करने वाला एक ही तबला वादक कलाकार दिख पड़ता है, और वह है शेख दाऊद। वैसे अमीर हुसैन खां बचपन में हैदराबाद में रहे, परंतु उनका कला जीवन बंबई में फूला फला। शेख दाऊद खां साहब का जन्म शोलापुर में हुआ, और अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने पिता मोहम्मद कासिम से ग्रहण की, और बाद में उन्होंने अमरावती के उस्ताद अल्लादिया खां और पुणे के महबूब खां मिरजकर के पास तबला सीखा। वे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हैदराबाद में नौकरी करते थे, और उसके दौरान अलग अलग कलाकारों के साथ संगत किया करते थे। फलतः शास्त्रीय कंठ संगीत के लिए समयोचित नाद मधुर और प्रभावकारक साथ संगत का तंत्र उन्होंने विकसित किया, जिससे पूरे भारतवर्ष में उनका नाम विख्यात हुआ। कंठ संगीत के साथ साथ वाद्य संगीत की संगत भी वे बड़े कौशल के साथ किया करते थे। उस्ताद शेख दाऊद के पास अलग अलग उस्तादों की रचनाओं का बड़ा खजाना था और अपने मीठे हाथों से इन रचनाओं को वे अत्यंत तैयारी में अपने स्वतंत्र वादन में पेश करते थे। उनके स्वतंत्र वादन पर उस्ताद अहमद जान थिरकवा की छाया श्रोताओं को प्रतीत होती थी। स्वयं शेख दाऊद उस्ताद थिरकवा को अपना गुरु मानते थे। अपने शोलो वादन में खानदानी गतें, गत टुकड़े और अनेक शब्दों की रव को वे प्रभावात्मकता के साथ पेश किया करते थे। हर विस्तारक्षम रचना पूरी करते समय कलाकार तिहाई की मदद लेते हैं। जिस लय में वह रचना बज रही है, उसी लय में उस रचना के शब्दों से तिहाई का प्रयोग करने का रिवाज होता है। लेकिन उस्ताद शेख दाऊद विस्तारक्षम रचनाओं के अंत में आने वाली तिहाई अलग ही लय में, विशेषतः धीमी लय में बजाया करते थे और एक चमत्कृति पूर्ण वातावरण निर्माण करते थे। शारंगदेव के कालखंड में शास्त्रीय संगीत का प्रस्तुतिकरण पहले चित्रा मार्ग में होता था और बाद में वार्तिक मार्ग में, यानी वार्तिक की आधी गुण लय में और बाद में दक्षिण मार्ग में उसी रचना को प्रस्तुत किया करते थे और यहाँ वह रचना पूरी हो जाती थी। उस्ताद शेख दाऊद को पता भी नहीं होगा कि वे विस्तारक्षम रचना में उनकी तिहाई धीमी लय में प्रस्तुत होने के कारण वह प्रस्तुतिकरण मार्ग पद्धति की लय बदलने के क्रिया से मिलता जुलता है। उस्ताद शेख दाऊद के अनेक शिष्यों में बी नंद कुमार और किरण देश पांडे अग्रसर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 253। पंडित अनोखे लाल मिश्रा, असामान्य रियाज से तबला वादन में किस प्रकार कौशल प्राप्त किया जा सकता है, उसका आदर्श पंडित अनोखे लाल मिश्रा थे। बनारस घराने के पंडित भैरव प्रसाद से उन्होंने तालीम हासिल की थी। पंडित अनोखे लाल के वादन में प्रकर्ष के साथ प्रतीत होने वाले वैशिष्ट इस प्रकार हैं। पहला, बनारस घराने के वादन की छाप उनके संपूर्ण वादन पर थी, जो स्वाभाविक ही है, किंतु अपने सोलो वादन में दिल्ली सहित अन्य घरानों के कायदे भी वे अत्यंत शास्त्र शुद्ध पद्धति से प्रस्तुत किया करते थे। दूसरा, उनके वादन में चमत्कृति का विशेष अवलंब नहीं होता था, किंतु विलक्षण तैयारी, स्पष्टता आदि गुणों के कारण उनका वादन हमेशा परिणाम कारक हुआ करता था। तीसरा, कायदे के या चलन के प्रस्तुतिकरण में उक्त रचनाओं का विस्तार वे अत्यंत अनुशासनबद्धता के साथ और खाली भरी तत्व के अनुसार किया करते थे। जो बात भरी में बजेगी वही खाली में भी बजनी ही चाहिए, यह उनका आग्रह रहता था। एक एक शब्द को बदल कर रचना का विस्तार करने के उनके वैशिष्ट के जरिए उनका प्रत्येक कायदे का प्रस्तुतिकरण तुलनात्मक दृष्टि से दीर्घकाल तक चलता था। अपने विलक्षण रियाज से उन्होंने दम सांस शक्ति को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया था। फलतः रचना को दीर्घ काल तक प्रस्तुत करने के दौरान बिल्कुल आखिरी पलटे में भी उनका वादन समान सशक्तता के साथ संपन्न होता था। चौथा, इस विशेष दम सांस के रियाज के फलस्वरूप नाधीन धिन्ना का ठेका अत्यंत द्रुत लय में तबले पर आधे आधे घंटे तक निरंतर बजाते रहने की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। समस्त भारत भर उनका नाधीन धिन्ना सुनने के लिए श्रोतृवर्ग उत्सुक रहता था। ईस्वी सन 1950 के दरमियान 10 वर्षों का एक काल ऐसा था कि अलग अलग संगीत सभाओं, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में पंडित अनोखे लाल का तबला वादन श्रोताओं को सदैव सुनने को मिलता था। दुर्भाग्य से आयु के 55वें वर्ष में उनका देहांत हुआ, जब उनका तबला वादन सर्वांगों से फूला फला था और जो भारत भर में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। पृष्ठ संख्या 254। पंडित समता प्रसाद। पंडित समता प्रसाद बनारस घराने के ज्येष्ठ वादक पंडित बाचा मिश्र के सुपुत्र थे। अपने पिता से वे तबले की तालीम लेते थे। पिता की असमय मृत्यु के बाद समता प्रसाद जी के सामने शिक्षा ग्रहण में बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित हुईं, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करके उन्होंने बनारस घराने के महान वादक बिक्कू महाराज से तालीम ली। बनारस घराने की पूर्ण गुरु संस्था ने यह अच्छी तरह से समझ लिया था कि कठोर रियाज के पश्चात ही कौशल प्राप्त होता है और यह वादन कौशल ही वादक को बड़ा कलाकार बनाता है। पंडित समता प्रसाद जी ने भी बहुत ही सख्त और कठोर रियाज किया और उनके हाथ से सब महत्वपूर्ण शब्द तूफान तैयारी में बजने लगे। पंडित समता प्रसाद जी के मंच पर आगमन होने से पहले तबले और बाएं पर निकास की एक लोकप्रिय और लोकमान्य शैली विद्यमान थी। तबला प्रायः काली चार या काली पांच के स्वरों में बजाया जाता था। पंडित समता प्रसाद जी जब पूरे देश में अपना तबला वादन पेश किया करते थे, तब संपूर्ण रसिक जगत पंडित जी के तबले और बाएं पर निकलने वाले नादों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अत्यंत सुंदर, स्पष्ट, वजनदार, गूंजयुक्त, सशक्त और सुरीली चाट से वे रसिक श्रोताओं को मोहित किया करते थे। उनका बाएं का घुमारा भी थोड़ा सा अलग एवं स्वतंत्र नाद निर्माण करता था। बनारस घराने के तबले के अलावा उन्होंने दिल्ली घराने के कुछ कायदों पर भी अच्छा रियाज किया था और उन्हें वे महफिलों में बड़ी सुंदरता से पेश किया करते थे। दो उंगलियों का रियाज करने से ही उन्होंने यह कौशल हासिल किया था। सितार, सरोद और नृत्य की साथ संगत के साथ साथ महफिलों में वे सोलो वादन भी बड़ी सुंदरता से करते थे। उनकी लय बड़ी पक्की थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने साथ संगत में कभी मुश्किल एवं क्लिष्ट लयकारी का प्रदर्शन नहीं किया। हिंदुस्तान के सब चोटी के कलाकार उन्हें साथ संगत के लिए लिया करते थे। अनेक सांस्कृतिक मंडलों में और स्वतंत्र वादन के लिए वे बहुत बार विदेश भी जाया करते थे। पंडित समता प्रसाद जी के स्वरमय नाद मधुर तबले के कारण अनेक चित्रपटों में गायन की साथ संगत के लिए उनका तबला संगीत निर्देशकों ने लिया है। पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के नामवर एवं प्रसिद्ध विद्वान पंडित कंठे महाराज के भतीजे एवं शिष्य थे। प्रदीर्घ काल तक घराने की तालीम उन्हें अपने पिता हरिराम जी और चाचा पंडित कंठे महाराज से प्राप्त हुई। आज के जमाने में बनारस घराने के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में उन्होंने संगीत विश्व में मान्यता प्राप्त की है। पृष्ठ संख्या 255। पंडित किशन महाराज का व्यक्तित्व और उनके वादन वैशिष्ट्य निम्नानुसार है। पहला, पंडित किशन महाराज की बुद्धि कुशाग्र है, फलतः न केवल बनारस घराने का बल्कि तबले के सभी वादन वैशिष्ट्यों का उनका अध्ययन बहुत ही गहरा है। उनकी विद्वता एवं वादन की परिपक्वता उनके वादन में पग पग पर प्रतीत होती है। दूसरा, पंडित किशन महाराज का तबले के गणितों पर बहुत बड़ा अधिकार है। अत्यंत जटिल एवं विविध लयकारियों के गणित उनके वादन के जरिए प्रस्तुत हुआ करते हैं, किंतु उनका तबला गणित प्रधान होने पर भी एकांगी नहीं बना है। तबले की भाषा पर भी उनका उतना ही प्रभुत्व है, इसलिए उनका तबला भाषा एवं प्रगत गणित के जरिए पेश होता है। तीसरा, ईस्वी सन 1950 के काल में भारत में जो तबला बजता था वह बहुतांश में त्रिताल में ही प्रस्तुत हुआ करता था, किंतु उस समय उत्तर में पंडित किशन महाराज और मुंबई में उस्ताद अल्लाह रखा, ये दो ही महान तबला वादक विद्यमान थे जो अन्य तालों में भी समर्थता के साथ तबला वादन प्रस्तुत किया करते थे। पंडित किशन महाराज जी ने 9, 11, 13, 15 इत्यादि विषम मात्राओं के तालों में भी तबला बजाने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक ताल पर उन्होंने स्वतंत्र विचार किया है। तालों का गणित जान लेने के कारण उनका अन्य तालों का भी वादन हमेशा विचार प्रवर्तक एवं असली रहता है। चौथा, सोलो वादन में पंडित किशन महाराज ने नाम कमाया है, किंतु उस जमाने में वे सात संगत के अत्यंत लोकप्रिय कलाकार माने जाते थे। फिर वह सात संगत गायन की हो, वादन की हो या कथक नृत्य की। कथक नृत्य के शब्द प्रयोगों परन तोड़े का उनका निकास इतना शास्त्र शुद्ध एवं परिपूर्ण होता था कि मानो उनकी उंगलियों के जरिए ही कथक नृत्य का प्रस्तुतीकरण हो रहा हो। पंडित बिरजू महाराज, पंडिता सितारा देवी और पंडित गोपी कृष्ण के साथ पंडित किशन महाराज के तबले की साथ संगत सुनना श्रोताओं के लिए मानो एक दावत ही होती थी। पांचवा, स्तुति परनों में देवताओं के वर्णन होते हैं जिनमें विविध जातिवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनमें संयुक्ताक्षर होते हैं, गूंजयुक्त अनुस्वार होते हैं और वे लयबद्ध होते हैं। एकाध स्तुति परन पंडित किशन महाराज मौखिक रूप में कहकर फिर हाथ से बजाया करते हैं, तब स्तुति परन के मानवी भाषा के बोली शब्द तबले में से हूबहू निकालकर दिखाने का कर्तव्य वे करते हैं। इससे यह बात ध्यान में आ जाती है कि उन्होंने शब्द अक्षर के निकासों का कितनी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन अभ्यास किया है। पृष्ठ संख्या 256। आयु के 77वें वर्ष में आज भी किशन महाराज अत्यंत उत्साह एवं जोश के साथ रंगतदार तबला वादन करते हुए दिखाई देते हैं। तबला वादन के अलावा वे विद्यादान में भी रस लेते हैं।